नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हाल की मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करता आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता हुई। इस दौरान अपने प्रारंभिक भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को तीन परस्पर मूल्यों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेदों को विवाद या प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलना चाहिए।
Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में कल भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित हो गया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों सहित अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना कर उन्हें सशक्त बनाना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक उत्तर में बताया कि ये विधेयक एक सुधारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सभी तटीय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कल संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि जब निर्वाचन आयोग कोई काम करता है और इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे आयोग को पत्र लिखकर अपील दायर करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होगी। इसमें सभी नेताओं का श्री सीपी राधाकृष्णन से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए टोल संग्रह कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में इसे अनुबंध समझौते का उल्लंघन और स्थिति को संभालने तथा कर्मचारियों के अनुशासन को सुनिश्चित करने में एजेंसी की विफलता बताया। एनएचएआई ने टोल संग्रह कंपनी को टोल प्लाजा के ठेकों के लिए भविष्य में लगाई जाने वाली बोलियों से रोकने और उसे बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। 17 वर्षीय गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।